ओम शांति। हमारे बीच माननीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, दुनिया में बहुत से लोग डॉक्टरी करते हैं, लेकिन इन जैसा डॉक्टरी करने वाला दूसरा नहीं होता। अगर कहा जाए दिल वाले गुप्ता जी, आपने हार्ट में स्पेशलाइजेशन किया। हार्ट में स्पेशलाइजेशन करने के बाद लोग हार्ट की सर्जरी करते हैं, हार्ट को एंजियोग्राफी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपने खास तौर से ऐसा लगता है कि दिल वालों के लिए, जिन्होंने भगवान को दिल दे दिया, उनके लिए हार्ट में विशेषताएं प्राप्त की थी। आज हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सानिध्य में आने के बाद आपने जो कार्य शुरू किया कैट का, हजारों ऐसे रोगी हैं जिनकी संख्या लाखों तक लगभग पहुंच रही है, जिन्होंने आपके माध्यम से अपने जीवन में बिना लाखों गवाए अपने दिल को बचा लिया है। कई बार डॉक्टर कहता है आपकी तीन तीन आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक है। हमारे इलाहाबाद का ही एक बहुत बड़ा प्रसंग है कि वो भर्ती था भाई हॉस्पिटल के अंदर, और डॉक्टर कह रहे थे कि आपका ऑपरेशन करेंगे, बिना ऑपरेशन के आप नहीं जाएंगे, और यहाँ कैट का प्रोग्राम था। डॉक्टर साहब ने यहाँ बुलवा लिया। बुलवाने के बाद जो जीवन परिवर्तन आपने उसका किया कि वो आज तक बखुशी ब हेल्थ, माना जिसको कहते हैं स्वास्थ्य सहित, बहुत अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आयु भी उनकी कम नहीं है, काफी आयु है। तो डॉक्टर साहब ने जीवन को जीने की कला सिखाई। अभी आपने सुना ना कि कैसे जीवन हमारा परिवर्तन होता है, कैसे हमें परमात्मा को याद करके आध्यात्म को और मेडिकल साइंस को जोड़ने का गुर डॉक्टर साहब के हाथ में है। ये केवल दवाइयों से नहीं, दुआओं से ठीक करते हैं। और तो और, हमारे दादी जी के, जिस समय दादी अस्वस्थ चल रही थी गंभीर रूप से, निरंतर साथ रहे, अंग संग छाया की तरह रहे, और मेडिकल एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं कि दादी जी को बहुत करीब से देखा जाना, आध्यात्म की गरिमा उनसे प्राप्त की, लेकिन जिसको कहते हैं विज्ञान की कसौटी पर यह भी देखा कि एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व जब बीमार पड़ता है तो उसकी मानसिकता कितनी, मनोबल कितना सुदृढ़ है कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा चाहते थे डॉक्टर साहब वैसा दिशा देते गए और दादी जी के स्वास्थ्य में सुधार होते गए। अनेकों बार दादी जी को रिटर्न जर्नी की ओर लाए। तो ऐसे डॉक्टर साहब, जिन्हें बाबा भी दिल वाला डॉक्टर कहता है, और हमारे यज्ञ में भी कैट के नाम पर एक ही नाम आता है डॉक्टर गुप्ता का, आज आप क्लास कराएंगे हमारे बीच, हेल्दी बॉडी इन हेल्दी माइंड, कैसे आध्यात्म को और विज्ञान को आपने जोड़ा है, अभी आप हम सबके सामने रखेंगे। पूरे परिवार सहित डॉक्टर साहब यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। जो ट्रामा सेंटर आप देखते हैं उसका सुपरविजन भी आप कर रहे हैं, उसके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, अब हमारे सामने हैं। ओम शांति।
ओम शांति। दो दिन पहले ही हम बाबा से मिले हैं, परसों ही मिले हैं। परसों बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर लक्ष्य दिया, और एक आज की मुरली भी हम सबने सुनी है कि हम सभी कौन सी दुनिया बना रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा हम बच्चों के साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। उस दुनिया में कोई बीमार होगा क्या, कोई बीमार होगा, कोई दुखी होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिससे हम सदाई स्वस्थ रहेंगे, सदा खुश रहेंगे? ऐसी कौन सी पढ़ाई होगी वहां पर? यही राज्यों की पढ़ाई ना, ये जो राज्यों की पढ़ाई है, ये जो बाबा की हम रोज मुरली सुनते हैं, ये मुरली ही वो चीज होगी जिससे आज अगर हम मुरली को जीवन में धारण कर लेते हैं, ब्राह्मण जीवन की जो बातें हैं, जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, ब्राह्मण जीवन के नियम हैं, अगर उनको जीवन में अपने जीवन में पक्का धारण कर लेते हैं, सच्चे ब्राह्मण बन जाते हैं, तो इसी पढ़ाई का प्रलब्ध क्या होगी? स्वस्थ जीवन, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। ये जादू हो जाएगा वहां पर जाकर। मैं जादू होगा कि यहां की पढ़ाई का असर होगा? यहां की पढ़ाई का असर वहां पर हमारे जीवन में होगा। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को सदा के लिए स्वस्थ और सदा खुशी कैसे बना दें, जिसमें हमारा मन भी खुश रहे, आत्मा का दिल भी सदा भरपूर रहे, सतोप्रधान रहे और सदा हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। भले शरीर में रोग आए, किंतु रोग भी हमारे शरीर को, हमारे मन की स्थिति को प्रभावित ना कर पाए। शरीर के रोग भले सूली जैसे आए, सूली समझते हैं ना, फांसी जैसे ना। मैं तो दादी जी को देखता था, दादी जी के जब दादी जी बड़े दादी जी दादी चांद दादी प्रकाशमणि जी जब बीमार थे, तो भले उनके शरीर में कितने ही रोग आ गए थे, कितनी परेशानियां, तो दादी फिर भी मुस्कुराती थी, देह से उपराम रहती थी। डॉक्टर्स कुछ भी इनको सुई लगाते, हॉस्पिटल में कुछ भी इनके यहां कुछ भी मतलब इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स जो भी होते थे, सब तरह के डॉक्टर्स आते थे, चेस्ट के डॉक्टर अलग थे, हार्ट के डॉक्टर अलग थे, किडनी के डॉक्टर अलग थे, दिमाग के डॉक्टर्स अलग थे, हर एक अपना अपना इलाज करता था। किंतु दादाजी सबसे मुस्कुरा के मिलना और सबसे जैसे अपने देह से उपराम, जैसे अपनी देह है ना, जैसे अपनी कार, अपनी कार ठीक कराते तो क्या होता है, गैरेज में जाके गैरेज में लेके अपनी कार लेके जाए तो आप क्या करेंगे, गैरेज वाला कार को हथौड़ा मारेगा तो आप कुछ दर्द, आप चिल्लाएंगे क्या? नहीं चिल्लाएंगे। तो ऐसे ही जैसे कि डॉक्टर जो भी शरीर के साथ करे वो करे, वो अपना काम करे, मैं अपनी बाबा की याद में रहूं। तो जैसे हर बात से उपराम रहते थे, तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कैसे इस संगम के समय पर जब बाबा के साथ हैं हम, ये मधुर मिलन है, ये मधुर मिलन का समय है, इसका एक एक सेकेंड कीमती है, तो कैसे अपने विकर्मों को विनाश करते हुए सदा ही स्वस्थ कैसे रहें। और अगर हमारे शरीर में कोई रोग आ भी गया है, चाहे वो हार्ट का रोग है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द है, एसिडिटी होती है, सांस दमे की बीमारी है, सिर का दर्द, माइग्रेन का दर्द है, कुछ भी बीमारी है, पेट की खराबी है ना, मतलब कोई भी बीमारी है यहां से लेकर नीचे तक, वो सबके सब रोग भी कैसे हम योग से ठीक कर सकते हैं, राजयोग से, बाबा की याद से कैसे उसको हम सूली से कांटा बना सकते हैं। जो बीमारी किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हो सकती, वो आप ठीक कर सकते हैं। इतनी सारी दवाई खाने की के बजाय इतनी सी दवाई से आप ठीक हो जाएंगे, थोड़ी सी दवाई से आप ठीक हो जाएंगे। दवा और दुआ, 90% दवा, दुआ और 10% दवा, ऐसा जादू सा असर करेंगे देखेंगे आप। और खाली आपको असर नहीं होगा, बल्कि जो भी आपके साथ आसपास रहने वाले, आपके परिवार वाले, आपके आसपास वाले, उनको भी आप ठीक कर सकेंगे। तो इसी बात पे चर्चा करते हैं। एक मिनट इससे पहले सभी अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे, सभी अलर्ट होके बैठें। जैसे मैं अपना स्विच ऑफ करते, मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं ना, तो SMS जाता नहीं, आता नहीं, हम फोन कर नहीं सकते, हमें कोई फोन कर नहीं सकता। ऐसे अपना मन बुद्धि को एकदम स्विच ऑफ कर दीजिए। सिर्फ एक ही संकल्प रखना है कि मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं बिंदु हूं। बाबा ने भी कहा ना, तीन बातें याद रखनी है। पुरुषार्थ क्या है वैसे तो, विजय माला का मणका बनने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने कहा ना अभी जो लास्ट मुरली थी, विजय माला का मणका बनने का पुरुषार्थ, मैं बिंदु हूं, जो बात हो गई उसको बिंदु लगाना है और क्या करना है, सबको बिंदु देखना है। मैं बिंदु हूं, सब बिंदु हैं, और कुछ बात हो जाए तो क्या करना है, उसको बिंदु लगाना है। ठीक, तो अभी चलिए सब बिंदु बन के बैठ जाएंगे। मन बुद्धि को एक एक ही संकल्प में बैठेंगे बस, और कोई संकल्प नहीं। मैं बिंदु हूं, मेरा बाप बिंदु है, और अभी तक जो कुछ बीता वो क्या है उसको भी बिंदु लगा देना। चलिए, ताकि हमारे मन में जो बातें हम डिस्कस करें वो अंदर बैठती जाएंगी। जो शब्द जो है बीमारी, जो शब्द है, जैसे आज दुनिया में कहते हैं सभी लोग बीमार हैं, चाहे मन से बीमार है चाहे तन से बीमार है। अब एक सर्वे हुआ था पीछे, उस सर्वे में पता लगा, शहर में सर्वे किया गया था, ये चार बड़े बड़े शहर हैं जो हमारे भारत में, दिल्ली, मद्रास मतलब चेन्नई, कलकत्ता और कौन सा शहर है, हा? नहीं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ये चार बड़े सिटीज भारत में कहे जाते हैं। चारों सिटीज में सर्वे हुआ था तो ये पाया गया कि हमारे तन के रोग 100 लोगों को 200 रोग हैं, एवरेज 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। हर तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर है, हर सातवें आदमी को हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज 100 में से 12 लोगों को है, 40% लोग मोटे हैं, है ना, 100 में से 25 लोगों को एसिडिटी की बीमारी है, 100 में से 20 लोगों को हड्डियों की बीमारियां हैं, है ना, 100 में से 5 लोगों को कैंसर है, 100 में से 5 लोगों को थायराइड की बीमारी है, ऐसे 100 में से 10 लोगों को सांस की तकलीफें हैं। तो ऐसे अगर 100 में से 10 लोगों को आंख नाक कान गले की बीमारियां हैं, 10 लोगों को स्किन की बीमारियां, खाल की बीमारियां, स्किन त्वचा की बीमारियां हैं, तो ऐसे देखो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। और सबसे बड़ी बीमारी मन की बीमारी कौन सी, चिंता। चिंता सभी को है, चिंता है सभी को, चिंता होती है सभी को, नहीं होती है? आप में से कितने ऐसे जिनको चिंता बिल्कुल नहीं, हाथ उठाओ जिनको चिंता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चिंता बेफिक्र एकदम, 7-8-10 लोगों ने हाथ उठाया नीचे के, बाकी सबको चिंता है ना। तो चिंता सभी को जैसे है लगभग ना, जैसे फिर भी चलो बाबा मिला है तो हमें होना चाहिए तो बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, फिर भी कोई ऐसे हिम्मत से हाथ उठाए कि मुझे कोई चिंता नहीं है, बहुत थोड़े लोग होते हैं ना। गुस्सा सभी को आता है, गुस्सा सभी, जो गुस्सा कभी नहीं करते हाथ उठाओ, जो गुस्सा कभी नहीं करते, बिल्कुल कभी नहीं करते, कभी आज तक किया नहीं गुस्सा, हाथ उठाओ, कभी नहीं किया, पक्का 1-2-3 लोगों ने हाथ उठाया। माताएं उठाए जिन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया आज तक, एक ने नहीं किया, चार लोगों ने गुस्सा नहीं किया। देखो मतलब गुस्सा भी सभी करते हैं ना लगभग, चार ने हाथ उठाया चलो बाकी तो नहीं उठाया ना, तो बाकी सभी गुस्सा, गुस्सा सबसे बड़ी बीमारी है ना, गुस्से से अपना भी दिल जलता है, दूसरों का भी जलता है, सारा वातावरण खराब हो जाता है, तो ये भी बीमारी है। चिंता करना, गुस्सा करना, जल्दी करना, हर बात में अपनी चलाना, मैं ही राइट हूं, मैं ही ठीक हूं, ये बहुत बड़ी बीमारी है ना। अहंकार अपने अंदर, लालच, काम विकार तो है ही, आलस्य करना, अलबेलापन करना, ये भी बहुत बड़ी, दूसरों में दोष निकालने की आदत, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करती, ये ऐसा हो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी तो बीमारी है, ये भी तो एक बीमारी है ना, मन की बीमारी है ना। तो ये बीमारियां सारे समाज में फैली हुई है। बाबा ने कहा ना, हर आत्मा दुखी है और अशांत है, पैसे वाला हो चाहे गरीब हो। गरीब है उसके पास खाने को नहीं है, उसको रोग नहीं है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज नहीं है, उसके पास खाने को नहीं है, और जिसको जिसके पास पैसा है खाने के लिए, वो किसकी क्या हालत है, उसके पास उसको ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, हार्ट की बीमारी भी है, ना वो नमक खा सकता है, ना वो चीनी खा सकता है, ना तला हुआ खा सकता है। तो जिसको खाने को नहीं है वो हेल्दी है, और जिसको खाने को सब कुछ है वो बीमार है, ठीक है, वो खा नहीं सकता है। तो आज की हालत ऐसी है मन की ना। तो जो बीमारी शब्द दो शब्दों से बना है, बीमारी शब्द है ना दो शब्दों से बना है, बी माना डर और मारी माना बने रहना, डर बने रहना। अगर आपके मन में डर बने रहता है हमेशा तो बीमार हो जाएंगे, बीमारी समझो बीमारी है आप। और आज हर मनुष्य है इसको डर है कि नहीं है। मुख्य चार प्रकार के डर होते ना, एक तो मरने का डर, मृत्यु का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बीमारी का डर, और चौथा गरीबी का डर है ना, कि मैं पैसे वाला भी डरता है कहीं मेरे को नुकसान ना हो जाए, और जो गरीब है बेचारा वो तो गरीब है ही है ना, कि उसको लगता है कि मैं शाम को मुझे खाने को क्या मिलेगा। तो चार डर सबको है ना, और डर ही कारण है बीमारी का। अब हमें स्वस्थ होना है। स्वस्थ शब्द हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं हेल्दी। हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना है। हेल्दी शब्द माना हेल्दी माना हील डाई, हील और डाई, हील माना अपने ठीक करना, हील माना हीलिंग, डाई माना अपने आप को। अर्थात हेल्दी शब्द का मतलब है कि हमें अपने आप को स्वयं ही ठीक करना है। सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो अपने आप को जिससे हम अपने आप को ठीक जो आपको ठीक कर सकता है, वो कौन है? शिव बाबा ठीक करेगा। शिव बाबा क्यों ठीक करेगा? सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही है जो आपको ठीक कर सकता है, वो कौन है बोलो? कौन वो कौन करेगा ठीक आपको? हाँ, आप सपोज कहते, कई लोग कहते शिव बाबा ठीक करेगा। आप गलत बोलते रहो, गलत काम करते रहो, गलत खाते रहो, तो शिव बाबा ठीक करता रहेगा? जिम्मेवारी किसकी है ठीक करने की? हमें, हमारी खुद की जिम्मेवारी है। बाबा की, बाबा तो श्रीमत देते हैं ना, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, चलने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है ना। डॉक्टर भी कहता है, डॉक्टर सलाह देता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और डॉक्टर जो सलाह दे रहा हो नहीं मानो तो फिर जिम्मेवारी बीमारी कौन, बीमारी किसको आएगी? डॉक्टर को आएगी, हमें आएगी ना। तो एक एक बात समझने की है कि एक बात अगर हम समझ जाएं कि अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी किसकी है, खुद मेरी है। अगर मुझे खुद को स्वस्थ रखना है तो कौन स्वस्थ रखेगा मुझे? सिर्फ मैं ही स्वस्थ अपने आप को रख सकता हूं, कोई डॉक्टर या मेरे माता पिता या मेरे बच्चे या मेरे भाई बहन या गवर्नमेंट मेरी स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार नहीं है। सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको स्वस्थ रख सकता है, वो स्वयं आप हैं। ठीक है, अब सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर आप जो कुछ करते हैं वो निर्णय करता है कि आप बीमार होंगे कि ठीक रहेंगे। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करने से क्या होगा? हीलिंग होगी कि डैमेज होगा? फायदा होगा आपको, नुकसान होगा? आप हेल्दी बनेंगे कि बीमार होंगे? अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो बीमार होंगे स्वस्थ बनेंगे? बीमार होंगे। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो बीमारी आएगी कि स्वस्थ बनेंगे? बीमारी आएगी। नहीं, ज्यादा सोचेंगे तो बीमार होंगे कि स्वस्थ बनेंगे? बीमार होंगे। नहीं, हर समय डरते रहेंगे तो क्या होगा? बीमार होंगे ना, नहीं होंगे? दूसरों में दोष निकालते रहेंगे तो बीमार होंगे ना, दूसरों में बुराई देखते रहेंगे तो बीमार होंगे ना, गलत बातें कानों सुनते रहेंगे तो बीमार होंगे ना, नहीं होंगे? गलत खाएंगे तो क्या होगा? पराठा खाएंगे, पकोड़ा खाएंगे, मिठाइयां खाएंगे तो क्या होगा? बीमार होंगे, क्योंकि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है वो बनना। हमारे शरीर के लिए क्या क्या फायदेमंद है? फल खाना, सब्जी खाना, अंकुरित खाना, दूध पीना, ये सात्विक भोजन है। देवताओं को क्या भूख लगाते हैं? फलों का, सब्जियों फलों का लगाते हैं, दूध का लगाते हैं, है ना। तो सात्विक भोजन खाएंगे तो हमारा हेल्थ बनेगी, और अगर हम रात्रि के भोजन ये जो तला हुआ पदार्थ होते ना, पराठा पकौड़ा समोसा मिठाइयां, ये सब रास्तिक पदार्थ हैं जो हमारे अंदर आलस्य पैदा करते हैं, अलबेलापन पैदा करते हैं, तो इससे बीमार होंगे। और तामसिक भोजन जो है वो बासी भोजन खाना, नॉनवेज खाना, लहसुन प्याज खाना, ये तामसिक भोजन है। तामसिक माने जो हमारे अंदर विकार पैदा करता है, गर्मी पैदा, उत्तेजना पैदा करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को पैदा करता है, तो बीमार होंगे, है ना। तो ये बात अगर हम समझ जाएं कि इन पांचों कर्मेंद्रियों से हम अगर अच्छे कर्म करेंगे, सोचना, देखना, बोलना, खाना, सुनना, हाथों से कर्म करना, अच्छे कर्म करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम बुरे कर्म करेंगे, विकारों के वश कर्म करेंगे, विकारों के वश सोचेंगे, विकारों के वश देखेंगे, विकारों के वश बोलेंगे, विकारों के वश खाएंगे, विकारों के वश सुनेंगे, विकारों के वश में काम करेंगे हाथों से पैरों से, तो बीमार होंगे। ठीक है, तो ये पहली बात, पहला नंबर फार्मूला। ठीक है, फिर हेल्दी को हिंदी में कहते हैं स्वस्थ। स्व माने क्या होता है? स्व माने आत्मा, और स्था माने स्थित। तो स्वस्थ कौन है? जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो स्वस्थ है। जो सदा अपने को आत्मा समझ के हर कार्य करता है वो स्वस्थ है, और जो अपने को देह समझ के काम करता है वो बीमार है। आज सभी बीमार क्यों है मनुष्य दुनिया में? क्योंकि सबके सब अपने आप को देह समझ के काम करते हैं, और देह समझने से डर पैदा होता है। बताया ना शुरू में कि बीमारी शब्द कहां से आया? बी माना डर, मारी माना बने रहना। तो अपने आप को आत्मा समझे तो डर रहेगा आपको? आत्मा समझेंगे तो डर खत्म हो जाएगा। आत्मा मरती है कभी क्या? आत्मा कभी बूढ़ी होती है क्या? आत्मा बीमार नहीं होती है, आत्मा कभी गरीब नहीं होती है ना? तो अगर अपने को आत्मा समझेंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी और आप सदा स्वस्थ रहेंगे। तो सदा स्वस्थ माना सदा अपने को आत्मा समझ के रहना, मैं चमकता हुआ सितारा हूं ये समझ करके रहना। अब आत्मा यहां है, शरीर को कैसे चला रही है, शरीर कैसे चल रहा है? आत्मा है तो सब कुछ चल रहा है, और आत्मा नहीं है तो कुछ चलता है क्या? अभी आत्मा निकल जाए तो मुख बोलेगा क्या? कान सुनेंगे, आंखें देखेंगे? कुछ भी नहीं होगा। हार्ट चलेगा, खाना पचेगा क्या, सांस आएगा फेफड़ों में से? कुछ भी नहीं होगा ना। तो ये आत्मा कैसे चला रही है शरीर को? इसलिए कविता, एक कविता बनी थी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कभी उसमें यही कह रहा है कि एक सितारा यहां चमक रहा है। बाबा की मुरली में भी कई बार ये बात आती है, वृक्ष के बीच चमकता है अजब सितारा, आता है ना बाबा मुरली में कहते हैं ना कि एक सितारा चमक रहा है यहां पर। जब तक वो चमकता है सब कुछ काम करता है, जब वो चमकना बंद कर देता है कुछ भी काम नहीं करता। कविता कवि इसलिए कहता है हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कि मुझे आश्चर्य होता है तुम कौन हो, तुम कैसे छोटा सितारा सारी सारी बॉडी को चला लेते हैं, है ना। कितना मतलब जो है ये सूक्ष्म है, दिखाई देता नहीं आंखों से, इसको काट के देखो तो दिखाई अंदर मिलता नहीं। अगर करके देखें ऑपरेशन तो अंदर मिलता है क्या? आत्मा दिखाई देती है क्या? दिखाई भी नहीं देती है। तो इतनी सूक्ष्म है कि उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, एक एक बात उसके अंदर भरी हुई है। जैसे शरीर ऊपर टेप रिकॉर्डर में आती है चलने शुरू हो जाती है। तो आत्मा जो है, आत्मा एक बिंदु है, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर है, 3 इंच यहां से नीचे है, उसके दोनों पॉइंट के बीच में जो पॉइंट है उस पे वहां पर आत्मा, यहां पे यहां आत्मा नहीं है, यहां से 2.5 इंच अंदर अंदर और यहां से 3 इंच नीचे है ना, वहां पर आत्मा है। और ये आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु है, और ये इस जैसे एक सितारा होता है ना, उसमें से लाइट निकलती रहती है। जैसे बिजली का बल्ब है ना, यहां पर एक ये लाइट है, सर्च लाइट है, इसमें से दो एनर्जी निकल रही है, एक तो गर्मी निकल रही है और एक लाइट निकल रही है। ऐसे आत्मा से 7 लाइट निकलती रहती हैं। कितनी लाइट निकलती रहती है? 7 लाइट निकलती रहती है। इस सात शब्द से ही सतो सतो शब्द आया है। सतो और प्रधान, प्रधान माना फुल। जब आत्मा सातों में फुल है ना, सातों लाइट में फुल है, तो उसको सतो प्रधान कहते हैं। जब वो लाइट आधी हो जाती है तो उसको रजो कहते हैं, शाम। रजो माना शाम और तमो माना अंधेरा। जब सातों लाइट लगभग ना के बराबर होते हैं तो तमो कहते हैं, तमो प्रधान कहते हैं। जब आत्मा सातों लाइट से भरपूर है तो उसको पावन कहते हैं। पावन माना एकदम पावन, माना एकदम प्योर, प्योर 100% प्योर। और जब सातों लाइट बहुत कम हो जाती है तो उसको पतित कहते हैं, अंधेरे में पतित है ना। तो जब आत्मा सातों लाइट से भरपूर है तो शरीर को, यहां से सातों लाइट शरीर में जा रही है जिससे शरीर काम करता है, इसी कारण शरीर काम कर रहा है। शरीर में करंट पहुंच रही है, वो सात लाइट की करंट पहुंच रही है तो शरीर काम कर रहा है। हमारी बॉडी में लगभग 80 बिलियन कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। 1 बिलियन माना 100 करोड़, राइट। तो 80 ट्रिलियन कहते हैं उसको। ट्रिलियन माना 1000, 1000, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। तो 80 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में, और वो आत्मा सबको चला रही है। फेफड़े भी चल रहे हैं, हार्ट भी चल रहा है, ब्रेन भी चल रहा है ना, पेट में खाना भी पच रहा है, लीवर भी काम कर रहा है, किडनी भी काम कर रही है। हमारी किडनी 1 घंटे में सारा खून साफ कर देती है। तो 24 घंटे में 24 बार खून साफ होता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 बार खून को पंप करता है। हमारे फेफड़े 1 मिनट में 14 बार सांस लेते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो सारे काम जो है आत्मा कर रही है। तो आत्मा से सात जो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी कहो लाइट कहो, वो निकल रही है और मन के माध्यम से होती हुई वो शरीर में जाती है। मन क्या है? आत्मा की एक शक्ति है। आत्मा की कितनी शक्ति है? 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। जैसे हाथ के कितने अंग, हमारे शरीर के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं, उसमें से हाथ भी एक अंग है ना? मुझे कुछ आपको देना हो, मुझे कुछ आपसे लेना हो तो क्या कैसे देंगे, कैसे लेंगे? हाथ से लेंगे ना, हाथ से देंगे, हाथ से लेंगे। ऐसे आत्मा को कुछ भी शरीर को देना होता है तो मन के माध्यम से देती है। मन के माध्यम से आत्मा शरीर को कुछ देती है ना, ये 7 लाइट कैसे देती है? मन के माध्यम से देती है। मन क्या चीज है? मन तो सोचने की शक्ति कहते हैं ना, सोचने की शक्ति है, बुद्धि जजमेंट करने की शक्ति है। और संस्कार क्या है? जो चीज हम बार बार करते हैं हमारे संस्कार बन जाते हैं, और आदमी अपने संस्कारों से पहचान जाता है। जैसे कोई आदमी बार बार सिगरेट पीता है तो क्या कहते हैं उसको? स्मोकर कहते हैं। शराब पीता तो क्या कहते हैं उसको? शराबी कहते हैं। कोई दान करता है तो उसको क्या कहते हैं? दानी, दानी कहते हैं ना। कोई दया करता है उसको क्या बोलते हैं? दयालु बोलते हैं ना। कोई किसी पर रहम करता है उसको रहमदिल बोलते हैं। तो अपने संस्कारों से हर व्यक्ति पहचाना जाता है, राइट। तो ये आत्मा के मन, माना मन में 4 बातें होती हैं। बाबा ने मुरली में एक बताया था कि मन में 4 बातें होती हैं। मन के अंदर 4 बात, 4 एस्पेक्ट है मन के। इंग्लिश में कहते हैं टीम, टीम माना, टी का मतलब थॉट्स, विचार, संकल्प। ई, टी के बाद ई है ना, ई माना इमोशंस, भावनाएं। ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, दृष्टिकोण, नजरिया। और एम माना मेमोरीज, स्मृतियां। तो मन के अंदर 4 बातें कौन कौन सी होगी? टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो आत्मा जो 7 एनर्जी है आत्मा के अंदर जो निकल रही है हमेशा, लाइफ है इसमें से हमेशा लगातार लाइट निकल रही है, गर्मी भी निकल रही है, लगातार निकल रही है, ये तो नहीं बीच बीच लगातार निकलती है। तो ऐसे ही आत्मा से 7 एनर्जी निकलती रहती है, और टीम के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, वृत्ति के माध्यम से और स्मृति के माध्यम से शरीर में वो एनर्जी जाती रहती है। अब वो 7 एनर्जी कौन कौन सी है? पहली एनर्जी है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज वैसे तो बहुत बड़ा है, बाबा मुरली में कहते हैं कि ज्ञान तो कितना है, सारे सागर को शाही बनाओ, धरती को कलम बनाओ और जंगल को कलम बनाओ तो क्या होगा, तो भी पूरा नहीं होगा। किंतु सार रूप में ज्ञान चार बातों में आ जाता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी में सारा ज्ञान आ जाता है सार में, ए बी सी डी। ए माना क्या होता है, ए माना आत्मा, वैसे दुनिया में तो ए माना एप्पल होता है ना, किंतु तो यहां पर दूसरी ए बी सी डी है, ए माना आत्मा, बोलो सभी, ए माना, बी माना बाबा है ना, बाबा माना सब आत्माओं का पिता कौन है, शिव बाबा है ना, पारलौकिक पिता है शिव बाबा और अलौकिक पिता कौन है, ब्रह्मा बाबा है ना। तो ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना कनेक्शन, कनेक्शन माना हमारा संबंध, हमारा सर्व संबंध हमारे उसके साथ है, चाहे मां का संबंध देखो, बाप का संबंध देखो, टीचर का संबंध देखो, सतगुरु का संबंध देखो, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, जो भी संबंध, पत्नी का संबंध, पति का संबंध, जो भी संबंध निभाना हो, दोस्त का संबंध, भाई का संबंध, जो भी संबंध है वो हमारे उसके साथ है। संबंध माना हमारा उसके साथ संबंध है, एक्चुअली हमारा एक ही असली संबंध उसके साथ है, बाकी दुनिया में हमारे संबंध नहीं है, हमारे कर्तव्य हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हर आत्मा को जीने के लिए क्या चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, और शांति प्यार और खुशी हमें कोई देहधारी दे नहीं सकता है। हमारे बच्चे हमें शांति देते हैं क्या, हमारे संबंधी पति पत्नी आपस में दूसरे को शांति देते हैं क्या, हैं? शांति देते हैं कि शांति देते हैं, प्यार देते हैं दुख देते हैं, खुशी देते हैं दुखी देते, दुख दुखी करते हैं। तो दुनिया में ये जो सात एनर्जी है ना, ये सिर्फ भगवान दे सकता है, शिव बाबा दे सकता है, बाकी सबको चाहिए। जैसे आप घर के बड़े हैं तो आपसे बच्चे क्या चाहेंगे कि हमारे मम्मी पापा हमें प्यार करें, हमें पैसे दें, हमें खुशी दें, है ना, हम गलतियां करते रहें, हमें माँ बाप हमें माफ करते रहें, है ना, नहीं, सहन करते रहे हमारी सब बात। पत्नी भी पति से क्या चाहती है, मेरी सब बातें सहन करता रहे। पति पति क्या चाहता है पत्नी से, मेरी हर बात पत्नी सहन करती रहे, कोई बात हो मेरी बात किसी को बताए नहीं, समाती रहे, नहीं बस चाहते नहीं चाहते, कोई बात हो भी जाते समेट ले वे, किसी को नहीं कहे, कोई भी चाहेगा मेरी बात जाके बाहर बताओ, कोई नहीं चाहेगा ना। तो सारी बात, सारी सारी शक्तियां, सातों गुण जो हैं वो आत्मा को परमात्मा से मिलते हैं, तो संबंध हमारा उसके साथ है, बाकी सबके प्रति ड्यूटीज हैं, कर्तव्य है, फर्ज है हमारा, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, है ना, वो फर्ज है। वो फर्ज क्यों फर्ज है, क्योंकि पहले जन्म में हमने उनसे लिया हुआ है। कोई मेरी पत्नी क्यों बनी, कोई मेरा वही आदमी मेरा पति क्यों बना, ये बच्चा ही मेरा आके क्यों बना, मेरा बच्चा क्यों बना, ये मेरी बेटी क्यों बनी, मेरा बेटा क्यों बना, यही पड़ोसी मेरे पड़ोस में आके क्यों रहने लगा और दूसरा लो आदमी क्यों नहीं आके रहने लगा, यही आदमी मेरा बिजनेस पार्टनर क्यों है, दूसरा आदमी क्यों नहीं मेरा बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि उनसे हमारा हिसाब किताब है। तो हमने किसी से लिया हुआ है, किसी से दिया हुआ है, इसलिए वो हमारे घर में आके इकट्ठे हो गए। तो अब मेरा फर्ज है जिनसे लिया हुआ है उनको वापस देना, और जिनसे जिनको दिया हुआ है उनसे वापस लेना, है ना। तो फर्ज है कि संबंध है, क्या है बताओ, फर्ज है ना, कर्तव्य है क्या कि संबंध है, कर्तव्य हुआ ना, तो ये हमारे कर्तव्य हैं, राइट। तो हमारे संबंध उसके साथ है। तो फिर डी माना ड्रामा, ड्रामा माना संसार एक नाटक है, ड्रामा है, इसमें हम सब एक्टर्स हैं और परमात्मा इसका डायरेक्टर है, शिव बाबा इसका डायरेक्टर है। और डायरेक्ट कैसे कर रहा है, कर्म सिद्धांत के अनुसार, अर्थात जिससे मैंने लिया हुआ है उसको मुझे देना पड़ेगा। वो मेरा बेटे के रूप में है या मेरी बेटी के रूप में है या मेरी पत्नी के रूप में है या पति के रूप में, उसको देना पड़ेगा। मैं उसको सुख देता रहूंगा तभी मुझे दुख देता रहेगा, दुख देती रहेगी, क्योंकि मैंने दुख दिया हुआ पिछले जन्म में। अगर मैंने इसके सुख दिया हुआ है, किसी पिछले जन्म में सुख दिया हुआ है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति उसको मैं दुख दे रहा रोज तो भी मुझे वो सुख देता रहेगा, चाहे बेटा है चाहे पत्नी है चाहे पति है, कोई भी। ऐसा होता नहीं होता है। तो ये संसार एक नाटक है, ड्रामा है। इसलिए मेरा बाबा है वो इसका डायरेक्टर है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ कैसा हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा, क्योंकि बाप है ना। बाप पार्शियलिटी करेगा क्या, नहीं करेगा ना। बाप किस लिए आया है, मेरे सब विक्रम विनाश करा के मुझे पतित से पावन बना के अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए आया है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहीं पर काम करता है, कहीं दूसरे शहर में रहता है, बच्चा बहुत दुखी है बीमार है, और बाप को पता लगता है, बाप जाता है, जाके देखता है, अरे इसको तो बीमार भी है, इसको डॉक्टर का बिल भी देना है, दूध वाले का भी बिल देना है, इसका भी बिल देना है, इसका भी बिल देना है ना। तो बाप क्या करेगा, बच्चे के पास तो कुछ है नहीं, तो बाप सबको दूध वाले का बिल भी देगा, डॉक्टर का बिल भी देगा, सबके बिल चुकतू करा के, और फिर बच्चे को प्यार से वहां पर इलाज भी कराएगा, और फिर लेकर के अपने घर वापिस आ जाएगा। नहीं तो ऐसे हम भी क्या है, हम भी पतित हो गए, दुखी हो गए, रोगी हो गए, बहुत लोगों कर्जा देना बाकी है ना। तो बाप क्या करता है, कुछ बच्चे के पास, बेटा तू इसको दे दे, ये भी इसका भी दे दे, ले मैं तेरे को देता हूं, ये अपने जेब से निकाल के देता है, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो, इसका भी दे दो, इसको भी दे दो, दिलवाएगा उसके हाथ से ही, अपने हाथ से नहीं देता है। ऐसे हमारे पास भी, अब हमारे मान लीजिए जिसको संबंध है, पड़ोसी है, बहुत तंग करता है, हमारा बिजनेस पार्टनर बहुत तंग करता है, हमारे बच्चे हैं, पति पत्नी माँ बाप हैं, कुछ भी हैं, हमें बहुत तंग कर रहे हैं। तो बाप क्या करता है, अब मुझे तंग कर रहे हैं तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। बाप कहता, लो बच्चे सहन शक्ति लो, तुम सहन करके चुकतू कर दो, इन्होंने पिछले जन्म में तुमसे बहुत सहन किया था, तुमने बहुत दुख दिया था उसको, इसलिए तुम्हें दुखी कर रहे हैं, लो सहन शक्ति मैं तुम्हें अपनी जेब से देता हूं, तुम सहन करते रहो, चलो चुकतू हो गया हिसाब, अब तुम वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश, चलो फिर ऊपर चलेंगे। नहीं, ड्रामा हुआ ना। तो इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला है अच्छा होने वाला। तो ये ज्ञान है, सिर्फ ये ज्ञान बाबा अंदर भर रहा है, ये ज्ञान हमारे यहां से निकल के सारी बॉडी में फैल रहा है, एक एक कोशिका पे फैल रहा है, एक तरह की आवाज है, इसको हम कहते हैं अनदनाद, शास्त्रों में लिखा अनदनाद, अनदनाद, अनदनाद माना जो कभी ना खत्म होने वाली आवाज, हर कोशिका पे आवाज जा रही है, इसलिए कोशिका काम कर रही है। जब आत्मा निकल जाती है, आवाज जानी बंद हो जाती है, कोशिका काम करना बंद कर देती है, हार्ट काम करना बंद होता है, हार्ट कर देता है, हार्ट फेफड़े काम करना बंद कर देते, दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब तक ये आवाज जाती है, इसी को हम शब्द कहते हैं। कई लोग जो सात आधार स्वामी में गए होंगे, इधर उधर गए होंगे, सुने होंगे ना नाम ना, सत्संग में जो दुनिया में सत्संग करते हैं ना, उसमें शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं ना, तो ये एबीसीडी सारी सेल्स पे जाता रहता है। फिर दूसरी, इससे एबीसीडी समझने से पवित्रता की पावर पैदा होती है, पवित्रता की एनर्जी पैदा होती है, एबीसीडी से पवित्रता का जन्म होता है। जितना ज्यादा एबीसीडी को बार बार अंदर हम लोग पवित्रता, ये निकलता है ना, एबीसीडी समझते हैं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सरल संबंध शिव बाबा के साथ हैं, और ये संसार एक ड्रामा है, इसमें सबका पार्ट अपना अपना पार्ट है, पर बाबा इसका डायरेक्टर है, इसमें जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा, तो मन पवित्र हो गया। तो ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति आती है, शांति से प्रेम आता है, शांति आएगी तो प्रेम आएगा ना, प्यार आएगा ना, प्यार से खुशी आती है, खुशी से आनंद आता है, और आनंद से शक्तियां आती है, परखने की शक्ति, जो चीज अच्छी है जिससे आनंद आया, प्यार मिला, खुशी मिली, वो अच्छी बात है, वो उसको हम ठीक, ये बात ठीक है, जिससे जिससे दुख हुआ वो बात गलत है, नहीं ऐसे करते, राइट रॉन्ग कैसे परखते हैं, जिसमें प्यार मिली, प्यार मिला, खुशी मिली, आनंद मिला, वो राइट है, नहीं, बुद्धि ने एक अंदर रिकॉर्ड हो गया ये रात राइट है, और जिससे दुख मिला, हाथ जल गया, करंट लगा, तो क्या कहेंगे? एक सामने एक स्विच है बिजली का, बदनंगी तार है, अब परखना है कि हाथ लगाऊं कि नहीं लगाऊं। बुद्धि को डिसीजन लेना, क्या करेगी बुद्धि? तो क्या करेगी? एक गुलाब का फूल रखा है, गुलाब के फूल को हाथ में लेके सूंघू कि नहीं सूंघू, क्या डिसीजन लेगी बुद्धि? परखने की शक्ति क्या करेगी? हाँ अच्छी बात है, सूंघना चाहिए, क्योंकि बचपन से सूंघते आए हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है ना। और एक एक ये बिजली का नंगा तार रखा हुआ है यहाँ पे करंट का, तो आप छुएंगे उसको, क्या कहेंगे? करंट लग जाएगा ना, क्योंकि उसमें दुख है ना। तो ऐसे परखने की शक्ति है ना, इससे पैदा होती है निर्णय करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति कछुए के माफिक है ना, विस्तार को सार में लाने की शक्ति। आपको कोई बात होगी जिसमें आनंद मिलता है उसके लिए क्या करेंगे आप? जिस बात में खुशी मिलती है उसके लिए क्या करेंगे आप? अपने घर में खाली थे क्या? खाली थे क्या? बाबा से क्या मिलता है? आनंद मिलता है ना, खुशी मिलती है। दादियों से क्या मिलता है? प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, बाबा से आनंद मिलता है। तो सब काम छोड़ के क्या आए? यहां भाग के आए? नहीं आए, समेट के आए ना सब कुछ? नहीं आए। कछुए के माफिक सब कुछ समेट के आ गए? नहीं आ गए। बहुत सारे काम थे बंद करके, किसको जिम्मेवारी देके, बच्चों की जिम्मेवारी देके इधर आ गए? नहीं आ गए। तो विस्तार को सार में लाने की शक्ति मिल जाती है। ठीक है, आनंद के लिए करें, आनंद के लिए किया ना, शांति के लिए किया, प्यार के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए किया ना। ऐसे ही समेटने की शक्ति मिली, सहन करने की शक्ति है, उसके लिए सब कुछ सहन भी किया, गाड़ी में धक्के भी खाए है ना, नहीं कि वहां आराम से बैठ के आए, ठंडी भी थी है ना, सब कुछ किया, नहीं किया, सहन भी करा, सामना भी किया। घर वालों ने कहा कहां जाते हो फालतू फालतू है ना, तो भी लोगों ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला क्या उसको वापस? सामना किया नहीं किया? संभाल लिया उनकी बातों को और सहयोग भी किया और अपने यहां आ गए। तो इस तरह से सातों एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ज्ञान से पवित्रता, पवित्रता से शांति, शांति से प्रेम, प्रेम से खुशी, खुशी से आनंद और आनंद से शक्तियां। तो ये सातों एनर्जी आत्मा से निकलती रहती है और परमात्मा सातों गुणों का सागर है और मन के माध्यम से शक्ति बॉडी में जाती है। अब ये अगर हमारा मन पॉजिटिव है, मन पॉजिटिव माना हमारी स्मृति पॉजिटिव है, अच्छी है कि शांति तो बहुत जरूरी है, प्यार तो बहुत जरूरी है, खुशी तो बहुत जरूरी है। खुशी का मतलब अतिंद्रिय खुश, सुखी सुख, ये खाने का सुख नहीं, खाने का भी सुख होता है ना, देखने का भी सुख होता है, वो तो इंद्रियों का सुख हुआ। अतिंद्रिय माना आत्मा का परमात्मा से मिलने का सुख, इंद्रियों से ऊपर का सुख। तो वो सुख जो है ये हमें परमात्मा से मिलता है, परमात्मा के साथ मिलने में मिलता है। तो ये जब हम इस सातों एनर्जी से आत्मा भरपूर है और टीम हमारी पॉजिटिव है, स्मृति हमारी अच्छी, मान ली कोई व्यक्ति है उसके मन में प्यार के प्रति बहुत नेगेटिव भावनाएं भरी हुई हैं, बचपन से देखा ना, जिससे भी प्यार से बोले उसने धोखा दिया, स्मृति में रिकॉर्ड क्या हो गया? हम जो भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी गलत देखते हैं, ठीक देखते हैं, गलत बोलते हैं, ठीक बोलते हैं, अंदर गलत सुनते हैं, वो सब अंदर रिकॉर्ड होता जाता है और वो स्मृति में रिकॉर्ड हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे 20 साल पहले मिला था, उसने हमसे मिसबिहेव किया था, गलत हमने बोला था, अब 20 साल हमको मिला नहीं तो हमें उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं आई। आज 20 साल बाद दोबारा मिल गया तो क्या होता है? मिलते ही क्या होगा? याद आएगा ना, उसने देखो ये बात मेरे को उस दिन बोली थी, तो क्या होगा? वो व्यक्ति तो सामने से बोल रहा है, भाई साहब कैसे हो आप, तो मैं तो आपसे बहुत दिनों से मिलने की सोच रहा था, मेरे को आपसे बहुत वो था, आपको गलत फहमी हो गई थी किसी बात पे उससे, आपने सोचा उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, किंतु आपको तो देख, वो तो आपसे बहुत प्यार से मिलने आया और आपके मन में उसको देख के वो बात याद आ गई, तो क्या होगा? वो प्यार जो आपको दे रहा है वो आपके अंदर जाएगा नहीं, ब्लॉक हो गया ना स्मृति में, आपकी स्मृति उसके प्रति गलत है, ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति गलत बिहेव करने वाला है, तो आप उसका प्यार आपके अंदर जाएगा नहीं जाएगा ना, तो स्मृति में ब्लॉक हो गया ना, यहां तो आया किंतु अंदर नहीं गया, शरीर में नहीं पहुंचा, नहीं तो रोमांच खड़े हो जाते। किसी को जिसने आपको एक व्यक्ति 10 साल पहले मिला था, उसने बहुत प्यार से आपसे व्यवहार किया था, बहुत प्यार से आपसे बातचीत की थी, तो क्या होगा? देखते ही वो बोलेगा, भाई साहब आप अरे आपके देख के इतना गदगद हो जाओगे, रोमांच शक्ल पर रौनक आ जाएगी, रोमांच खड़े हो जाएंगे ना, नहीं हो जाएगा। और इसके बजाय कोई व्यक्ति जिसने क्रिटिसाइज किया होगा उसको देखते क्या होगा, आपका मुंह छोटा सा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चेहरा मुरझा जाएगा, नहीं, मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो बात याद आई ना, तो वो प्यार की उसने, हालांकि अभी प्यार से बात कर रहा है किंतु आप प्यार अंदर नहीं जा रहा, वो बात याद आने से सारी बॉडी में वो एनर्जी जानी बंद हो गई, बल्कि स्मृति वृत्ति एटीट्यूड आपका नेगेटिव हो जाएगा, भावना गलत हो जाएगी, संकल्प गलत चलने लगेंगे, तो एनर्जी जाएगी नहीं, राइट। तो मन हमारा ये माध्यम का काम करता है, तो ये सातों एनर्जी जो मैंने बताई ये सारी बॉडी के सारे अंगों के लिए आवश्यक है, किंतु एक एनर्जी विशेष है। दिमाग के लिए ज्ञान चाहिए, एबीसीडी, जितना अधिक ज्ञान होगा ना एबीसीडी, उतना ही दिमाग आपका अच्छा काम करेगा, उतनी आपकी आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू, एचक्यू, चार क्यूज कहते हैं, आईक्यू माना इंटेलिजेंस, पावर ऑफ एनालिसिस, ईक्यू माना इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब सहयोग करने की शक्ति, एसक्यू माना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब आप अपने सबसे एक एक आत्मिक भाव, और एचक्यू माना हैप्पीनेस खुशी, हर हाल में खुश रहना, तो चारों का बैलेंस रहेगा, आप बहुत अच्छे काम कर सकेंगे, नई नई रिसर्च कर सकेंगे, आपका दिमाग बहुत एक्टिव होगा, आप तुरंत जजमेंट कर सकेंगे, गलत निर्णय नहीं, एकदम तुरंत निर्णय आएगा, हर काम जल्दी जल्दी होता जाएगा, और एबीसीडी कम, जितना कम होगा उतना कंफ्यूज रहेंगे आप, सिर में दर्द होता रहेगा, माइग्रेन आ जाएगा, नींद नहीं आएगी शायद आप, चल रहे क्या होगा, एबीसीडी की वजह क्या होगा, उल्टा होगा, मैं कम हूं क्या, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों करता है, उसने मेरे को मेरी बेइज्जती क्यों की, मेरा अपमान क्यों किया, सारा रात वही संकल्प, नींद भी नहीं आएगी, नहीं होगा ऐसे, तो दिमाग काम करेगा, तो एबीसीडी से दिमाग चलता है, ठीक है। जितना अधिक एबीसीडी को पक्का करते रहेंगे, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा सारा दिन ये अंदर में चलता रहेगा, इसको फील अनुभव करते रहो, खाली बोलना नहीं, अंदर से अनुभव, मैं आत्मा हूं, चमकता सितारा हूं, शिव बाबा का हाथ मेरे मस्तक पे है, सातों एनर्जी उससे मेरे अंदर आ रही है, वही मेरा माँ है, बाप है, टीचर, सदगुरु, बंधु, सखा, साजन, सजन है, और ये संसार एक नाटक है, किसी ने कुछ किया ना, माँ ने किया, बाप ने किया, भाई बहन ने किया, बच्चों ने किया, उनका पार्ट है, मेरा भी पार्ट है, उनका भी पार्ट है, सब हिसाब चुकतू हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, हल्के हो गए, नहीं तो दिमाग अच्छा काम करेगा, तो ज्ञान से दिमाग चलता है, पवित्रता से हमारी कर्मेंद्रियां चलती, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, और बीमारी से लड़ने का सिस्टम, जितना अधिक मन पवित्र होता है ना, उतनी आंखें अच्छा काम करती हैं, कान अच्छा काम करते हैं, मुख अच्छा काम करता है, नाक अच्छा काम करता है, त्वचा अच्छी काम करती है, बुढ़ापे में भी हमारी दादियां देखो कितनी एक्टिव रहती हैं, नहीं रहती है? 95 साल में कोई होता है एक्टिव, दुनिया में देखो 95 साल में कैसे हो जाते हैं, 90 साल में कैसे, 80 साल में कैसे हो जाते हैं लोग, देखो दादियां कितना काम, कितनी सेवा करती हैं, सुबह से लेकर रात तक 20-20 घंटा सेवा करती हैं, क्यों, क्योंकि पवित्र हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो ये पवित्रता की शक्ति काम करती है। इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होता है, कोई बीमारी कम आती है अंदर, शांति से फेफड़े चलते हैं, जितनी अधिक शांति शांति होती है ना मन में, उतना सांस गहरा चलता है, और गहरा चलता है और धीरे धीरे चलता है, 1 मिनट में 14 सांस लेते हैं हम, 1 मिनट में तो 14 सांस लेते हैं, तो उसमें से हमें सांस गिन के मिलते हैं, साल गिन के नहीं मिलते हैं, मान 14 के साल से मेरे पास 10 साल बाकी हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, विकारों के वश काम करते हैं, काम विकार के वश, क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, तो सांस जल्दी जल्दी चलते हैं, 14 की बजाय 20 बार चलेंगे, 25 बार चलेंगे 1 मिनट में, तो सांस जो 10 साल चलने वाले थे वो 6 साल में खत्म हो जाएंगे, 6 साल बाद शरीर छोड़ना पड़ेगा, अकाले मृत्यु हो गई ना, 10 साल बाद मृत्यु होनी थी और हो गई अभी 6 साल के बाद, तो क्या कहेंगे, अकाले मृत्यु, समय से पहले मृत्यु हो गई। और अगर हम बाबा की याद में रहें, मैं आत्मा हूं और निरंतर बाबा की याद में रहें, तीव्र पुरुषार्थ, जो बाबा का तीव्र पुरुषार्थी बनो, मैं बिंदु हूं, मेरा बाबा बिंदु है, और बिंदु लगाना है, सबको बिंदु देखना है, यही तीव्र पुरुषार्थ है, ये विजयमाला में आने का, मनका बनने का पुरुषार्थ है। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या होता है, मेरे साथ देखा, रिसर्च करके देखा एक मिनट में 8 बार ही सांस चलते हैं, तो एक मिनट में 8 बार चला तो क्या होगा? यही सांस कितने चलेंगे, 10 साल की बजाय 16 साल चल जाएंगे, तो 6 साल उम्र बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? तो ऐसे योग से आयु बढ़ जाती है। समझ में आयु कैसे बढ़ती है? तो जब शांति, प्यार, खुशी, जो बाबा ने कहा ना, ये सातों गुणों में जब रमण करते हैं ना, सातों गुणी जब बन जाते हैं तो हमारी आयु बढ़ जाती है। तो शांति से क्या चलता है, फेफड़े चलते हैं। आत्मा प्रेम से हार्ट को चला रही है, जितना अधिक प्रेम हार्ट में जाता है उतना आपकी आर्टरीज खुली रहती हैं, जितना गुस्सा करोगे आर्टरीज बंद हो जाएंगे, नसें बंद हो जाएंगे हार्ट की, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो शांति प्यार से हार्ट चलता है, खुशी से पेट चलता है, आंतें चलती, लीवर चलता है। जितना अधिक खुश रहोगे उतना पेट में हजम अच्छा होगा। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, कुछ भी खाओ तो हजम हो जाएगा, और अगर खुशी नहीं है तो क्या होगा, हर बात में टेंशन होती रहेगी, खाना पचेगा ही नहीं, बदहजमी होगी, एसिड बनेगा, कब्जी हो जाएगी, है ना, पेट साफ नहीं होगा, गैस बनती रहेगी। जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको गैस बहुत बनती है पेट में ना, साथ ही गैस की दवाई खाते थे, हाजमोला खाओ, है ना। आनंद से हमारे हार्मोन चलते हैं, हार्मोन ना मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ये चलती है। और फिर सातों ये 8 शक्तियां जो बताई मैंने आपको, इससे हमारी हड्डियां चलते हैं, जोड़ चलते हैं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन, सामना, समाना, ये 8 शक्तियों से हमारी हड्डियां और जोड़ बनते हैं। तो जितनी 8 शक्तियां ज्यादा होती हैं हमारे जोड़ मजबूत रहते हैं, 8 शक्ति कम हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती, जोड़ खराब हो जाते, कमर का जोड़, गर्दन के जोड़, घुटने के जोड़, हाथों के जोड़ खराब हो जाते जल्दी उम्र में खराब। देखो आज लोगों पर शक्ति नहीं ना, तो हड्डियां खोखली होती जा रही, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो रही है। और सातों एनर्जी मिलकर बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, पसीने के द्वारा और किडनी के द्वारा। इस तरह से हमारी जो आत्मा से 7 एनर्जी निकलती है, बॉडी को चलाती है। अब इसके लिए क्या करना है हमको, सुबह सुबह हमारे यहां एक घड़ी लगी हुई है यहां पर हाइपोथैलेमस में, उस घड़ी के अनुसार हर काम करो तो क्या होता है, वो काम एक्यूरेट होता है और उसका बहुत अच्छा फायदा होता है शरीर को। उस टाइम के अलावा काम करो तो इतना फायदा नहीं होता है। उस घड़ी, वो घड़ी कहती है कि रात को 10 बजे सो जाओ, रात को 12 बजे तक एक साइकिल नींद की पूरी कर लो, 2 घंटे की साइकिल होती है नींद की साइकिल, उसमें सपने की नींद होती है और गहरी नींद होती है। 10 बजे अगर हम सो जाते हैं तो रात की जो पहली 2 घंटे की नींद है उसमें सिर्फ 10 मिनट सपने की नींद होती है, 110 मिनट गहरी नींद होती है। 12 बजे से 2 बजे तक अगर हम सोते हैं तो उसमें 30 मिनट सपने की नींद होती है, 90 मिनट उसमें गहरी नींद होती है। और 2 से 4 अगर सोते हैं तो 2 से 4 में 50 मिनट सपने की नींद होती है, और 4 से 6 सोए तो क्या होगा, 90 मिनट सपने की नींद होती है। 4 बजे तक सपने याद नहीं रहते हैं, 4 से 6 वाले सपने याद रहते हैं, और 4 से 6 सपने जो आते हैं वो डरावने सपने होते हैं, खराब विकारी सपने होते हैं। तो अगर आप 6 बजे उठेंगे तो क्या होगा, उठते क्या याद आएगा, वो सपने देखे ना जो खराब खराब सपने, वो ही याद आएंगे, फिर क्या होगा, सारा दिन खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए 10 बजे सो जाओ, अपना चार्ट लिख के, अपना सारी दिनचर्या लिख के, बाबा को सारा सच्चाई से, सफाई से अपना पोता मेल दे के, जो गलतियां हुई बाबा से माफी लेके, और अगले ये दृढ़ प्रतिज्ञा, तीव्र पुरुषार्थी में ना, जो एक बार भूल हो जाए उसको दोबारा ना करे, उसे कहते तीव्र पुरुषार्थी। तो बाबा को सब दे के 10 बजे सो जाओ, और सुबह 4 बजे बाबा को बोल के सो जाओ, बाबा मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, 4:45 उठा देना, तो बाबा देखो आपको एक्यूरेट 4:45 बजे उठा देगा। ये हमारा 25 साल का अनुभव है, हम कभी अलार्म लगा के नहीं सोते हैं, और कभी ऐसा नहीं होता कि हम 4:45 बजे ना उठें, 3:30 बजे ना उठें, 3:30 बजने से 1 मिनट पहले उठ जाएंगे, गीत बाद में बजता है, हम पहले उठ जाते हैं, कभी अलार्म नहीं लगाया आज तक। चाहे मैं हॉस्पिटल से 2 बजे आऊं तो भी हम 3:30 बजे उठ जाएंगे, कभी नहीं मिस होगा, कभी मिस हो ही नहीं सकता है। बाबा को बोल के सोना, बाबा मुझे उठा देना, अच्छा बच्चे मैं उठा, बाबा ऐसे करेंगे बच्चे उठा दूंगा बस, और सचमुच उठा देगा। उठ के मुंह हाथ धो, ब्रश करके फ्रेश होके बैठो, प्यार और खुशी में आके बाबा को याद करो। सुबह सुबह अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि अमृत वेला ही विक्रम विनाश होते हैं। क्यों विक्रम विनाश अमृत वेला होते हैं? क्योंकि जब हम नींद से जागते हैं तो हमारे सिर्फ चार ही संकल्प चलते हैं एक मिनट में, दो तीन चार बस नींद में। और बाबा से योग लगाने के लिए बाबा शिव बाबा को कोई संकल्प नहीं चलता है परमधाम में, परमधाम में संकल्प होते ही नहीं। ब्रह्मा बाबा को एक ही संकल्प है, मेरे बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न और संपूर्ण बने, एवर रेडी बने, है ना? बाबा को एक ही संकल्प है। तो हमारे जब एक या दो संकल्प होंगे तो क्या होगा, हमारा बाबा से कनेक्शन हो जाता है। तो जब एक तो तुरंत हम चार दो तीन संकल्प पे हम उठे तो वैसे संकल्प किया, बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा, या एबीसीडी मन में रिवाइज करो, आत्मा मैं आत्मा हूं, चमकता सितारा परमात्मा की संतान हूं, उसका उनका हाथ मेरे मस्तक पे है और सातों एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और मेरे सर्व संबंध एक एक संबंध को अनुभव करो, और संसार में जो कुछ हुआ फुल स्टॉप, ड्रामा नाटक है ना, बस देखो क्या हो जाएगा, एकदम कनेक्शन लग जाएगा और एनर्जी भरनी शुरू हो जाएगी आपके। सातों बजे फ्लड आती ना, फ्लड सुनामी जैसे आती, सारी एनर्जी से भर जाएगी, ज्ञान भर जाएगा, पवित्रता रोम रोम में भर जाएगी, शांति प्रेम सुखानंद शक्तियां भर जाएंगी, ये सारी बॉडी जैसे आपकी आसपास लाइट भर जाएगी और भर भर के आसपास आसपास इकट्ठी हो जाएगी, ये लाइट की बॉडी बन जाएगी। जब लाइट की बॉडी बनेगी तो आपको क्या फील होगा, जैसे हम सूक्ष्म तन में पहुंच गए, उसी फीलिंग में बाबा से बातें करते रहो तो ऐसे लगे परम धाम में चले गए, बस मैं बिंदु हूं बाबा बिंदु है। तो ऐसी स्थिति में विक्रम विनाश होते हैं, तो अमृत वेले के समय ही सिर्फ विक्रम विनाश होते हैं। और ये जो आनंद की स्थिति जो प्राप्त होती है ना, इससे क्या होता है, इससे हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से, पिनियल ग्लैंड से 18 हार्मोन्स निकलते हैं, और उससे अगले 24 घंटे में जो भी बीमारियां आपके शरीर में है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियां कमजोर है, हार्ट की बीमारी है, एसिडिटी है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, सांस की बीमारी है, कुछ भी बीमारी है, माइग्रेन है, सिर दर्द होता रहता है, वो सब बीमारियां कम हो जाएंगी अगले 24 घंटे में। और अगर 4 से 5 का योग मिस कर दिया तो क्या होगा, अगले 24 घंटे में चारों सारी बीमारी बढ़ जाएंगी। इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इसलिए कहा जाता है इस समय जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। तो बहुत बहुत प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग करो, बहुत प्यार और खुशी में आके बाबा को याद करो और आनंद की स्थिति में पहुंच जाओ। आनंद कब आएगा, जब बाप और बच्चे का मिलन होगा, तो ये आप पक्का करो। और इस मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे मुरली 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 है ना, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, और तीसरी बात सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी भी सोने से पहले भले कुछ भी कितना बिजी रहा हो, अपने माँ बाप अपने बाप को बाबा को अपने मीठे बाबा को अपना अकाउंट देके सोए, अच्छा बुरा जो भी किया सब कुछ देके सोए, वो है सच्चा ब्राह्मण। आज जन 5 निशानी बताई ना बाबा ने मुरली में सच्चे ब्राह्मण की निशानियां, तो ये जब हम कर फिर 8 बजे तक चुप रहो, क्योंकि 8 बजे हमारे एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं। तो जो विचार जो टीम हम 8 बजे तक करते हैं, मतलब जो विचार भावनाएं स्मृति वृत्ति जो हम रखते हैं मन में, उसके अनुसार वो हार्मोन निकलते हैं। तो अगर आप हम 8 बजे तक चुप रहते हैं और बाबा की मुरली जो उस दिन की चलती है, आसाद से 8 मुरली चलती है, मुरली सुनते हैं और स्नान करते हुए भी बाबा की याद में रहते हैं, जो बाबा से अनुभव 4 से 5 के बीच में क्या, उसको उसी अनुभव में स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, तो वो हमारे अंदर 4 से 8 की हमारा पावरफुल योग हो जाता है, इकट्ठा 4 घंटे का योग हो जाता है, पावरफुल योग, योग अग्नि ज्वालामुखी तपस्या है ना, तो उसमें हमारे विक्रम विनाश होते रहते हैं। सबसे ज्यादा विक्रम विनाश अमृत वेले ही होते हैं। जैसे अगर आप सुबह सुबह अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं फुल चार्ज कर, सारा दिन बात कर सकते हैं ना, तो 4 से 8 हमारा बैटरी चार्ज करने का समय है। आत्मा की बैटरी चार्ज होगी ना एक बार, तो समझो फिर तो सारा दिन आपकी सारा दिन अच्छे काम अपने आप होते रहेंगे, बार बार बाबा की याद आती रहेगी। और फिर हमें उसके बाद सैर करो, 30 मिनट कम से कम तेज सैर करो, जरूर शूज पहन के 110 स्टेप पर मिनट के हिसाब से वॉकिंग करो, सैर तेज सैर करो, सुबह सुबह अंधेरे में नहीं, सूरज निकलने के बाद करो, ये जरूरी है बहुत। फिर अपना नाश्ता करो बाबा की याद में बहुत प्यार से, अंकुरित खाओ, सब्जी रोटी खाओ, बीन्स की सब्जी खा लो, दलिया खा लो, ज्यादा नहीं खाओ, चबा चबा के खाओ, बाबा की याद में खाओ, बातें करते हुए नहीं खाओ। फिर 11 बजे फल खा लो। हर घंटे में जब पानी पीना पड़े, जब भी कुछ करे तो बाबा को पहले याद कर लो, फिर बाबा, फिर याद, फिर खाना खाओ। ऐसे लंच करना, लंच करने के पहले फिर थोड़ी सलाद खा लो, फिर रोटी सब्जी खा लो, चावल खा लो, दाल खा लो, जो भी खाना खा लो। फिर शाम को 4-5 बजे थोड़ा पपीता खा लो, या फल, कोई फल मिले एक फल खा लो, क्योंकि फल दवाई का काम करता है। जो आपकी बीमारी, आपको बीमारी आएगी नहीं, फल खाने से हमारी बॉडी के टॉक्सिन सारे साफ हो जाते हैं, है ना। फिर कैप्सूल गोली, कैप्सूल ताकत की कैप्सूल खाने की आवश्यकता नहीं, गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं है। फिर शाम के समय आधा घंटा फिर सैर करके, अंधेरा होने से पहले पहले सैर कर लो, और फिर सैर करके फिर बाबा की याद में आधा घंटा बाबा को याद कर लो। फिर अपना जो है शाम के टाइम थोड़ा सा सब्जी, फिर सूप पी लो, थोड़ा सा सूप, सब्जी रोटी खा। रात के टाइम दाल चावल कड़ी नहीं खाना चाहिए, और सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। जैसे 10 बजे सोना है तो 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, ये नियम पक्का करना चाहिए। और सोने से पहले अपना चाट बाबा को दे दो, है ना। तो इस तरह से अगर आप दिनचर्या आपने चलाते हैं, और जो भी अंग में बीमारी आ गई, हार्ट में आ गई, उसको सकाश दो, शिव बाबा से लेके प्यार लेके हार्ट में डालते रहो, नसें खुल जाएंगी। दमे की बीमारी है फेफड़ों में, शांति देते रहो, शांति की शक्ति भरते रहो। और टीम, अपनी टीम जो नेगेटिव बन गई ना, टीम नेगेटिव है, उसको बाबा को लिख के दे दो। जो भी नेगेटिव विचार, भावनाएं, स्मृति वृत्ति मन में भरी पड़ी है, बाबा को लिखो, बाबा बचपन से लेकर मेरे आज तक ये मेरे में गलत संकल्प आए, गलत भावनाएं, गलत काम मेरे से ये हुए, बाबा को दे दो लिख कर, रोज एक बार लिख के दे दो पूरा जीवन कहानी। और फिर सोने से पहले रोज लिख दो कि बाबा मुझसे आज ये गलती हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो। फिर बाबा अमृत वाले आपको टच करके सारी शक्तियां भर देगा अंदर, ठीक है। तो अगर आप इस तरह रहेंगे तो सदा स्वस्थ भी रहेंगे और सदा खुश भी रहेंगे। तो दिनचर्या ब्रीफ में यही हमें करनी है कि सुबह पावरफुल अमृत वेला, फिर बाबा की याद में ही स्नान करो, फिर स्नान करके अगर गर्मी आ गई तो स्नान करके पहले वॉकिंग कर लो, वॉकिंग करके फिर बाबा की याद में वॉकिंग करो, बातें करते वॉकिंग नहीं करनी। मुरली का कोई पॉइंट ले लो, बाबा उसी पॉइंट को अंदर गहरा मंथन करते रहो, महीनता में जाओ, महान बनना है तो महीनता में जाना पड़ेगा। फिर बाबा की मुरली सुन लो, फिर मुरली सुन के नाश्ता कर लो, अपनी ड्यूटी पे चले जाओ, एक फल ले जाओ, 11 बजे फल खा लो, फिर लंच कर लो, फिर शाम को एक फल खा लो, और फिर शाम को आके थोड़ा सैर करके बाबा की याद में सैर करो, बाबा की याद में 15-20 मिनट बैठ के बाबा को याद कर लो, फिर खाना खा के फिर अपने आराम से घर में बातचीत करो बच्चों से, युगल से, और फिर सोने से पहले अपना चार्ट लिखो, बाबा से जो भी अपने दिन में जो भी हुआ सुबह से लेकर रात तक जो दिनचर्या बाबा ने बताई, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, बाबा से जो, इसको कहते सपूत बच्चा। ऐसे बच्चे ही सबूत दिखा सकते हैं, ऐसे बच्चे ही फिर विजयमाला का दाना बनते हैं, मणका बनते हैं, है ना। तो ऐसे फिर जहां भी रहोगे ना, आसपास अपने आप शांति, प्रेम, खुशी का वातावरण फैलता रहेगा। आप जहां रहेंगे आपके चेहरे चलन से लोगों को प्रत्यक्षता बाबा की होती रहेगी, ठीक है। ओम शांति। चलिए अभी 2 मिनट बाबा को सभी याद करेंगे, 7:30 बजे तक योग चलेगा, तो सभी बहुत पावरफुल बाबा को याद करेंगे, बहुत प्यार से याद करेंगे।
आप हो साथ में, आप हो आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जज का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, सामने आप हो साथ में आप हो, सामने आप हो साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।